हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 2 1.1.2। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वेद व्यास जी मंगलाचरण का द्वितीय श्लोक जिसमें श्रीमद् भागवतम महापुराण की महिमा का बखान कर रहे हैं उसको उच्चारण करते हुए कहते हैं, धर्मा प्रोचित कर्तव्योत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वीथ्यं वास्तवमत् वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत् ृथ्यवरुध्यतीतकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोचितकर्तव्योत्र परमो निर्मत्सराणां वीथ्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वरः सत्योरिथ्यवरुध्यतीत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोचितकर्तव्योत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुद्धतीतकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् धर्मः प्रोचितकर्तव्योत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वीथ्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यतीतकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक जिसमें वेद व्यास जी और अपने इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रथम श्लोक में भगवान के समस्त लक्षणों के विषय में बताया और कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मान्यस्य यतो वयादितरतः जातेष्वभि ज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अर्थात वेदव्यास जी ने कहा कि मैं केवल अकेला नहीं, मेरे जितने भी अनुयायी हैं, मेरे जितने भी शिष्य हैं, उनको अपने अखबार में भरकर एक हम सब मिलकर उस सत्यम परम धीमहि उस सत्य को, कौन है जो पहले बताया भगवते वासुदेवाय, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान की कृपा से है, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष रूप से, वो सब कुछ कृष्ण से ही उपज है। कृष्ण ही सबकी रक्षा करता है, पालन करता है, संहार करता है और वो स्वराट है, सब कुछ जानने वाला है। उसी ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया और उनकी लीलाएं इतनी मधुर और इतनी मोह उत्पन्न करने वाली कि बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीलाओं के विषय में मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्थल देखकर कोई मोहित हो जाता है, लेकिन धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धी, या जो मोह माया है, यह जो कि संसार में कुछ भी वास्तविक नहीं है, लेकिन फिर भी अवास्तविक होते हुए भी हमें वास्तविक लगता है, लेकिन भगवान का जो धाम है जहाँ पर भगवान रहते हैं, वह इन मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने धाम में है, वो उसके धाम में यह सब माया नहीं होती है। और मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। तो आज के नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने समस्त शास्त्रों की रचना की है, वह अपने इस शास्त्र श्रीमद्भागवतम महापुराण, जिनको ग्रंथ राज कहा जाता है, किंग ऑफ द लिटरेचर, उस भागवतम महापुराण की महिमा का बखान करते हुए यह द्वितीय श्लोक, जो कि मंगलाचरण का दूसरा चरण है, उसके विषय में बताते हैं। अब इस श्लोक में पहला शब्द उन्होंने उच्चारण किया धर्मः। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। एक जीव जो इस संसार में आया है उसका एक ही कर्तव्य है, क्या? क्योंकि वो भगवान का दास है, तो उसको भगवान को प्रसन्न करना है। अब यहाँ पर वेदव्यास जी बता रहे हैं प्रोजित। प्रोजित का मतलब होता है पूर्णतया अस्वीकार। अब इसका मतलब ये है कि वो इस शास्त्र में वो केवल आपके रियल जो है ना धर्म है उसके विषय में बताएंगे, और बाकी जो कुछ भी होगा कायतव, प्रोजित यानी पूर्णतया अस्वीकार, और कायतव, कायतव का मतलब होता है सकाम विचारधारा से प्रच्छन्न, यानी कि जो आपका रियल स्वरूप क्या है, आत्मा है, जीव आत्मा है, और आत्मा का अस्तित्व क्या है, भगवान का अंश है वो, और जो अंश है उसका एक ही धर्म होता है क्या, पूर्ण को प्रसन्न करना। तो इस शास्त्र में कायतव का मतलब होता है कुछ भी जो त्याज्य है, यानी कटक्ट, यानी सक्का में से। अब इस संसार में क्या है, दूसरे भी बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन उसमें क्या है, कर्तव्य है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्योंकि वेद व्यास जी ने दूसरे शास्त्र लिखे हैं और ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शास्त्र है उसमें कुछ भी कपट नहीं है। कायतव यानी बिल्कुल अस्वीकार किया गया है कायतव को। कायतव का मतलब होता है, जैसे दूसरे शास्त्रों में कैतव है इसका मतलब है। अब कैतव को कैसे हम समझेंगे? कैतव का मतलब होता है कि दूसरे जो शास्त्र है उसमें आपको क्या बताया जाता है, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, इस तरह की विचारधारा से वो ग्रंथों का निर्माण हुआ है जिससे आपको अपने इस भौतिक शरीर से रिलेटेड धर्मों के विषय में बताए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब त्याज्य हैं, लेकिन ये कपट है ना एक तरह से, जीव को कपट में रखा जा रहा है कि तुम ये हो तुम वो हो, लेकिन वास्तव में जीव क्या है, भगवान का अंश है और उसको प्रसन्न होने के लिए केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही आपका रियल धर्म है। और आप चाहे कुछ भी हो आपको ये सोचकर कार्य करना है, यानी कि वास्तव में कर्म योग क्या है कि आप अपना कर्म करते हुए भी योग अपना कृष्ण के साथ सुप्रीम पर्सनालिटी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ो। तो इस शास्त्र में आप इतना क्लियर वर्णन आज तक कोई दूसरा शास्त्र अब तक नहीं बना और ना ही बनेगा जिसमें भगवान का इतना क्लियर वर्णन हो। केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण में ही इतने निष्कपट भाव से भगवान श्री कृष्ण के विषय में, जो कि जीव मात्र का प्रथम धर्म है, उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने बताया इस श्लोक में अगर हम देखेंगे कैतवों के, कैतव का क्या मतलब है, चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कैतव के विषय में। दुहिसंग कहिए कैतव आत्मबंधना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। कैतव का अर्थ है कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अलावा हृदय में जब कोई कामना उत्पन्न हो जाती है वही कैतव है। हम आत्मा हैं और आत्मा का लक्ष्य केवल परमात्मा से प्रेम करना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि और कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं या कुछ इच्छा उत्पन्न होती है तो वह कैतव है। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं धर्मः प्रोजित कैतवोत्र, ये जो अत्र शब्द है ना इस श्लोक में तीन बार आया है। कहाँ पर आया? अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा धर्मः प्रोजित कैतवोत्र, यानी इस शास्त्र में। इस अत्र का मतलब होता है यहाँ पर तो कहाँ पर, क्योंकि ये भागवतम महापुराण की महिमा बता रहे हैं, तो इसका मतलब है इस भागवतम महापुराण में कुछ भी त्याज्य नहीं है, कुछ भी कपट नहीं है। भौतिक विचारधारा को पूर्णतया प्रोजित किया गया, पूर्णतया अस्वीकार किया गया है और व्यक्ति को आध्यात्मिक धरातल तक कि आप आत्मा हो, आपकी प्रसन्नता केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने से है, तो फिर आप ये इसमें कहता कुछ भी नहीं है। अब पहले यहाँ पर अत्र आया, आगे भी आएगा हम पढ़ेंगे। और आगे परमो, परमो का अर्थ है सर्वोच्च, मतलब यह धर्म परम धर्म है और इसमें कुछ भी निर्मत शरणम सताम। ये किन का धर्म है? निर्मत शरणम यानी मत्सर कहते हैं ईर्षा को, हसत को, लेकिन जो सताम का मतलब होता है भक्त। और यहाँ पर लिखा निर्मत शरणम सताम यानी शत प्रतिशत शुद्ध हृदय वाले भक्तों का धर्म यहाँ पर बताया जाएगा। और ऐसे भक्त जो ना किसी से ईर्ष्या करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं, उनको क्या करना, उनका धर्म क्या है, वही सर्वोच्च धर्म है, परमो परम धर्म वही है। जैसे धर्म प्रोजित कहे तो वोत्र परमो निर्मत शरणम सताम, कि इस शास्त्र में अत्रमा इस शास्त्र में ऐसा धर्म बताया जाएगा जिसमें कोई कपट नहीं है, क्योंकि भौतिक विचारधारा को बिल्कुल अस्वीकार किया गया है। और यहाँ पर जो शत प्रतिशत शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं उनका परम धर्म बताया जाएगा। और इस परम धर्म को जानने से क्या होगा उसके विषय में बताते हैं वेद्यम यानी जानकर, यानी जानने योग्य, यानी कि सिर्फ यही जो शास्त्र में आपको बताया जाएगा वही जानने योग्य है, क्योंकि वेद्यम वस्तु के दो गुण होने चाहिए। जो जानने योग्य है उसके दो गुण होने चाहिए, कौन कौन से? वास्तव वस्तु शिवदम, शिवदम पहला गुण, और दूसरा ताप त्रयोन्मूलनम। हम जो भी संसार में जानने की इच्छा करते हैं उसमें अगर ये दो क्वालिटीज नहीं है तो उसका जानना व्यर्थ है। पहला क्या है? शिवदम, कि उससे आपका कल्याण होना चाहिए। यदि आप कुछ जान रहे हो, यदि आप कुछ सीख रहे हो, यदि आप कुछ सीखना चाह रहे हो या पढ़ते हो या ज्ञान प्राप्त करते हो, उससे पहला गुण क्या होना चाहिए? शिवदम। शिवदम लिखा हुआ ना, देखो इसी लाइन के सेकंड लास्ट वर्ड। और दूसरा क्या गुण होना चाहिए? ताप त्रयोन्मूलनम। ताप त्रयोन, तीन प्रकार के ताप, मूलनम मूल से नष्ट हो जाने चाहिए। अब तीन प्रकार के ताप, वास्तव में इस संसार में जीव को तीन प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। एक तो आदि दैविक होते हैं, यानी जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे वर्षा, भूकंप, अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी, कभी कभी वर्षा का ना होना, कभी कभी इस प्रकार के ना अर्थक्वेक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो देवताओं के द्वारा अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ये सब देवताओं के, इनको आदि दैविक कहा जाता है। और आदि भौतिक, यानी जो जीव है ना दूसरे हमारे अलावा, जो दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं, जैसे जानवर भी देते हैं, जैसे मच्छर और है ना कॉकरोचेस, या फिर और दूसरे जितने भी जानवर हैं वो कष्ट देते हैं। और अगर देखा जाए तो आज मनुष्य को दूसरे जानवरों से ज्यादा मनुष्य कष्ट देता है। मनुष्य ही मनुष्य की जान का दुश्मन बना हुआ है। जानवर बेचारा क्या, आजकल तो कोई इस तरह के जानवर दिखते नहीं है, शेर जो किसी को खा जाए, हाथी और ये सांप वगैरह होते नहीं है जो किसी को मार डाले। जीव को जीव से ज्यादा कष्ट होता है, मनुष्य को मनुष्य से ज्यादा कष्ट होता है, कि ना दूसरे मनुष्य एक दूसरे प्लानिंग करते रहते कि मैं कैसे उसको कष्ट। इवन जो दुश्मन होते हैं वो तो सही है, लेकिन जो दोस्त आपस में, फ्रेंड्स स्कूल में जो फ्रेंड्स होंगे ना आपस में, वो भी किस तरह से उसकी हानि हो, बस उसकी इंसल्ट होनी चाहिए, टीचर उसको डांटे तो उसको भले वो उस टाइम पर उसको सहानुभूति देते हैं, लेकिन हृदय में एक अच्छा लग रहा होता है, उसको खुशी हो रही होती है कि आज उसको डांट पड़ी। जब मित्रता में यह हाल है तो हम सोच सकते हैं कि आज का प्राणी, आज का जीव, जिनसे मित्र नहीं है, जिनका मतलब जिनका मित्र नहीं है, जिनका वैसे ही उसको दुश्मन भाव है, वैर भाव है, उसको कष्ट में देखकर उसको कितना, या फिर उसको कष्ट पहुंचाने के लिए कितनी योजनाएं करता होगा जीव। तो ये जो दूसरे जीवों से हमें कष्ट मिलते हैं उन्हें आदि भौतिक कहते हैं, और तीसरे नंबर के कष्ट होते हैं आध्यात्मिक कष्ट, जो हमारे अपने शरीर के द्वारा, जैसे अगर शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उससे मन चिंता करता है, भय लगता है और टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, सोच होती है, जिसकी वजह से आजकल तो जीव मर जाता है, हार्ट अटैक होते हैं और इस तरह के अलग अलग रोग हृदय में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जीव जो है वो संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट हो भी नहीं सकती है। क्यों नहीं है? वास्तव में जीव को या मनुष्य को यह सारे ताप क्यों भोगने पड़ रहे हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है? जब तक हम अपने स्रोत, अपना जिसे हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम कौन है और हमें क्या करना है, वो अज्ञानता है। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है और हमें क्या करना है, तो वो अज्ञान है। प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जीव तभी सुखी हो सकता है जब वो कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर ले। हरि साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा जशाणाम अमृतोयम ईक्षते, यानी कि जैसे जशाणाम, जशाणाम कहते हैं जो जलचर होते हैं, जो जल के प्राणी, जैसे मछलियां, मछलियों के लिए तोयम यानी जल ही जीवन है, उसी प्रकार हरी जीवों के लिए जीवन है। इसके बगैर सुख प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक जीव अपना वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ नहीं जोड़ लेता है, तब तक सुखी होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे अगर मछलियों को ये पता ना हो, जैसे मछलियां भूल जाएं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, और वो जल के अंदर रहते रहते बोलें कि अब यहाँ से मुझे क्या करना है, निकलना चाहिए, सब लोग इतना मजा कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और है ना गाड़ियों में बैठ रहे हैं, एसी वाले कमरे में बैठ के एलसीडीज देख रहे हैं, और विमानों में घूम रहे हैं, एरोप्लेन्स में उड़ रहे हैं, तो हम लोग क्यों, हम भी क्या करते हैं, इस जल की गुलामी को छोड़कर इंजॉय करते हैं, बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और वहां पर जाके क्या करेंगे, मजा करेंगे। तो अगर जल से बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा, तड़प तड़प के धीरे धीरे मर जाएंगी। उन्हें चाहे करोड़ों के बंगलों में रख दिया जाए, चाहे करोड़ों खरबों के उनको हीरे जवाहरात दिए जाएं, अच्छे से अच्छे होटल के खाने बना के पिज्जा बर्गर इत्यादि उनको दिए जाएं, लेकिन उनको सुख तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वो फिर से जल के अंदर नहीं चले जाएंगी, जब तक कि उनको जल का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। मानो कोई व्यक्ति हो जो वाकई में मछलियों से ना प्रेम कर रहा हो और मछलियों की सहायता करना चाह रहा हो, लेकिन उसको पता नहीं हो कि मछलियों का जो रियल में स्वार्थ है, जो रियल में उनका कल्याण है, वो पानी के अंदर है, उनको पता नहीं हो, और वो उनको प्रचार करे जाकर कि देखो तुम निकलो इस जल की गुलामी से, बाहर निकलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम लोगों को बाहर हर चीज प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से अच्छा घर लेके दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा, कपड़े दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, एलसीडी लगा के दूंगा, एसी वाले रूम बना के दूंगा। तो इतना ज्यादा उनको यदि सब कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हो जाए तो भी क्या मछलियां जल से बाहर निकलकर सुखी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के अंदर रहना जल की गुलामी करना नहीं है, बल्कि जल के अंदर रहना ही उनके जीवन की खुशी है, क्योंकि इससे दूर होंगी तो मर जाएंगी। अगर आज हम ये सोचते हैं कि कृष्ण से दूर हो जाए और हम सुखी हो जाएंगे, तो ये उसी तरह से है जैसे मछलियां बेवकूफी में ये सोचें कि हम जल से दूर रहकर, जल गुलामी से अलग होकर हम सुखी हो जाएंगे। वास्तव में जीव सहज रूप से कृष्ण का दास है, और कृष्ण की भक्ति ही उसका इटरनल सुख है। इसके अतिरिक्त वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। जीव स्प्रिट है और भगवान होल स्प्रिट। भगवान को प्रेम करने से ही जीव सुखी हो सकता है, और भगवान की भक्ति करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र कर्तव्य कृष्ण से प्रेम करना है। यदि कृष्ण से दूर हो जाएगा तो आत्मा मर जाएगी, तड़पेगी, वह सुखी नहीं रह सकती। तो वास्तव में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्य वास्तव में जानने योग्य वही चीज है जिससे आपकी अज्ञानता दूर हो जाए कि आप कृष्ण से दूर रहकर भी सुखी रह सकते। ये मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान है कि वो अपने आप को भौतिक चीजों से सुखी करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर वेद्यासी बता रहे हैं वस्तु शिवदम, वास्तव में वेद्य भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 15.15 में, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वचाहम। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, जितने भी वेद हैं उनमें वास्तव में मुझे जानना ही जीव का लक्ष्य है। अहमेव, मैं ही केवल जानने योग्य हूँ। इसलिए प्रभुपाल जी कहते हैं कि पहले भागवतम पढ़ने से पहले भगवद गीता समझनी चाहिए, और भगवद गीता में लिखा हुआ भगवान ने कहा कि मैं ही केवल जानने योग्य वस्तु हूँ। और यहाँ पर वेदव्यास जी द्वितीय श्लोक में बोलते हैं वेद्यम वस्तु वही है जिससे आपका कल्याण हो। कल्याण हो। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, आपका कल्याण हो। कैसे? तापत्रयोन्मूलनम, सारे ताप मूल से नष्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि जीव का कल्याण केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम और कथा परम आनंद देती है। भगवान के विषय में जानने से तीनों प्रकार के ताप समूल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ताप क्यों हो रहे हैं? ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपना नाता कृष्ण से दूर कर दिया। अब ये सब क्योंकि भौतिक है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो सब, ये जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो देवताओं के जरिए से मिल रहे हैं या चाहे किसी दूसरे जीव के जरिए से मिल रहे हैं या अपनी हृदय के अंदर जो टेंशन होती है, जो ये आध्यात्मिक जो भी कष्ट हैं, वो भी हैं तो भौतिक स्टेज पर ना। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो इस भौतिक स्टेज से ऊपर आ जाते हैं। वास्तवम मात्र वस्तु शिवदम, जो वास्तव में आपका कल्याण करने वाली चीज है वो इसमें बताई जाएगी। देखो यहाँ पर भी अत्र आया, दो पहली वाली लाइन में भी हमने पढ़ा धर्म प्रोजित प्रयतवोत्र, यानी इस शास्त्र में आपका धर्म आपको बताया जाएगा जिसमें कोई कपट नहीं, कोई मत्सर नहीं। जो निर्मत्सर संत है ना, उनके द्वारा किया जाने वाला धर्म आपको बताया जाएगा जो भौतिक विचारधारा से बिल्कुल अलग है। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा भागवत, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको वास्तव में जानने योग्य, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत, वास्तव में जानने योग्य यानी कृष्ण के गुण नाम रूप लीलाओं के विषय में बताया जाएगा। और इसको सुनने से तापत्रयोन्मूलनम, सारे ताप नष्ट हो जाएंगे। आगे बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। अब श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् श्री कहते हैं सुंदर को, श्री कहते हैं बहुत ज्यादा जिसके अंदर पवित्रता हो, श्री कहते हैं ज्ञान को, श्री कहते हैं धन को, यानी कि जो कुछ भी वास्तव में अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, वो है श्रीमद्। और यहाँ पर कहा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि किसको कहा गया? वेद व्यास जी। कृते मना संग्रह, संग्रह किया गया। ये श्रीमद् भागवतम की रचना किसके द्वारा हुई है? जो महामुनि है, और वेदव्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सारे शास्त्र लिखने के बाद अंतिम शास्त्र जो उन्होंने अपने जीवन का लिखा है, जब समस्त शास्त्रों को लिखने के बाद भी उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, उनके मन की अशांति समाप्त नहीं हुई, तो अपने गुरु महाराज नारद मुनि के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की। और आगे तो यहाँ पर वेदव्यास जी कह रहे हैं कि किम वा परैरीश्वरे, आपको इसके अतिरिक्त किम मना क्या है, वा मना आवश्यकता, परैर मना अन्य, ईश्वर यानी ईश्वर, आपको इस शास्त्र के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये क्वेश्चन किया, किम वा परैरीश्वरे, कि आप जितने सारे शास्त्र आप आज तक है ना वेदव्यास जी ने लिखे हैं, उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे शास्त्र लिखने के बाद, अभी जैसे मैं अगर लिखना आज से शुरू करूं या बहुत पहले मैंने शुरू किया हो, और मैं आपको बताऊं कि ये जो शास्त्र है वो मैंने बहुत बचपन में लिखा था, इतना नॉलेज नहीं था, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, और ये मेरा अंतिम शास्त्र है। जब मुझे बिल्कुल ज्ञान पता चल गया सारा, उसके बाद मैंने ये अंतिम शास्त्र लिखा जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसके अंदर कुछ भी प्रोजित कायतवोत्रम, ये इसके अंदर ना कुछ कैतव है और ना ही कुछ त्याज्य है, ये एकदम परफेक्ट लोगों के लिए पढ़ने योग्य है। तो आप उनमें से कौन सा शास्त्र च्वाइस करोगे? अकलमंद होगा तो क्या करेगा? जो अंतिम होगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें उसने हर चीज परफेक्ट लिखी है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं किम वा परैरीश्वरे, जब श्रीमद् भागवतम महापुराण महामुनि वेदव्यास जी ने अपने एकदम परिपक्व अवस्था में लिखा था, तो दूसरे शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? और अब यहाँ तो यह प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, दूसरे शास्त्र भी पढ़ने का एक ही कारण है ना, कि उसमें भी बहुत भगवान की भक्ति के विषय में लिखा होता है, तो इसमें भी है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इसके पढ़ने से एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो वो बता रहे हैं यहाँ पर, सद्यो, सद्यो का मतलब होता है तुरंत, उसी टाइम पर क्या होगा, रिद्य, सद्यो रिद्य वरुद्य, रिद्य माने हृदय में, अवरुद्यते यानी दृढ़ हो जाएगा, हृदय में बस जाएगा, हृदय में कैद हो जाएगा। अत्र यानी यहाँ पर कृति भी, कृति भी का मतलब होता है पवित्र व्यक्तियों द्वारा, और शुश्रुषु भी यानी संस्कार द्वारा, तत्क्षणात अविलंब, उसी टाइम पर क्या होगा, जब हृदय में श्रीमद् भागवतम महापुराण को शुश्रुषु भी का मतलब होता है खाली सुनने की इच्छा यदि किसी को हो जाती है तो क्या होता है, भगवान उस जीव के हृदय में बंदी हो जाते हैं, अवरुद्धते यानी कि उसके अंदर कैद हो जाते हैं फौरन से, उसी टाइम जिस टाइम से आपके हृदय में भागवतम महापुराण को श्रवण करने की इच्छा मात्र उत्पन्न हो जाती है तो भगवान आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। और जब भगवान आ जाएंगे तो दुख रहेगा कहाँ, है ना, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक दुख तो इसलिए है क्योंकि हृदय में कुछ और भरा हुआ है, संसार भरा हुआ, और जहाँ पर जिस हृदय में भगवान रहेंगे वहां पर दुख होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लिखा हुआ है, कृति भी। कृति का अर्थ होता है पुण्य कर्म। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, पवित्र विधायक कर्म यानी ऐसे कार्य, मतलब वो कार्य जो आपके हृदय से अपवित्रता खत्म कर दे। तो किसी ने यदि बहुत बहुत ऐसे पवित्र विधायक कर्म किए होंगे, जैसे भगवान के प्रति जो जीव की अज्ञानता है ना, वो सबसे बड़ी अपवित्रता है, और भगवान के रूप गुण लीला का गान ही इसकी अपवित्रता को विनाश कर सकता। तो जो लोग भगवान के विषय में सुनकर अपने अपवित्रता को खत्म कर चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की बहुत बहुत भक्ति किए हैं, इनमें ही भागवतम सुनने की लालसा होती है। यानी कि डायरेक्ट से आपको भागवतम श्रवण करने की लालसा नहीं हो सकती। वास्तव में भक्तों, ये हमारे जीवन, कई सारे जीवनों के पुण्य कर्म का फल एकत्रित हुआ है, क्योंकि भगवान की लीला को सुनने की इच्छा कोई साधारण नहीं है। किसी में तो ये बहुत बहुत, जिसने पुण्य कर्म किए, सिर्फ पुण्य कर्म करने वालों के हृदय में ही भागवतम को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। पुण्य के बिना श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनने की इच्छा प्रकट नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर कहा कृति भी, जिसने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे बहुत बहुत, और उसी के हृदय में यह श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनने की इच्छा प्रकट होती है। और इच्छा प्रकट होने के बाद क्या होता है, शुश्रुषु भिस् तत्क्षणात्, उसी क्षण क्या होता है, सद्यो रिद्य वरुद्यते, उसी टाइम पर भगवान आपके हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव है दया करना, भगवान का स्वभाव है प्रेम करना, और वो सभी पर दया करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल उन लोग के ऊपर दया करते हैं जो पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन भगवान आपके इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैति तेषु चाप्यहम्। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ, जीव मात्र में मेरा संभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे प्रिय मुझ में ही स्थित हैं, और मैं भी उनका प्रेमी हूँ, उनमें हूँ। अब यहाँ पर यह लगता है ना कि भगवान उनकी ओर ज्यादा आकर्षित हैं जो उनसे प्रेम करते। पहले बोला मैं सबके साथ एक जैसा हूँ, लेकिन फिर वापस में दूसरी लाइन में क्या बोला, ये भजनते तो माम भक्त, जो मेरी भक्ति करते हैं वो तो मेरे हृदय में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का क्या स्वभाव है कि सबको एक जैसा रखना। ये विषमता जो है, ये जो डिफरेंस है ना, वो जीव की तरफ से है। भगवान ने पहले कह दिया 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजामि। तुम जिस भाव से मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हारे उस भाव को पूर्ण करूंगा। अब वो प्रेमी बन के आया है तो भगवान को डेफिनेटली प्रेमी बनना पड़ेगा ना, तो ये विषमता जो है वो जीव की तरफ से। तो यदि कोई जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म का सहारा लेता, बहुत बहुत पुण्य कर्म करता है, और एक दिन जब उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम यानी भगवान की लीलाओं के विषय में सुनने की इच्छा मात्र प्रकट होती है, तो भगवान उसके हृदय में आकर कैद हो जाना स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भगवान को लेकर आया जाता है, नहीं, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उसके हृदय में आ जाते हैं। तो जिन्होंने बहुत बहुत भक्तों का संग किया है, नाम कीर्तन किया है, बहुत बहुत भगवान की हृदय से सेवा की है, और जिन्होंने बहुत बहुत पहले जन्मों में भी पुण्य कर्म किए हैं, जिन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है, अच्छी तरह से भगवत गीता का श्रवण किया है, उन्हीं के हृदय में प्रेम से सुनने की लालसा उत्पन्न होती है। वास्तव में प्रेम का मतलब यही है कि हम उसके विषय में जिससे प्रेम करना करते हैं उसके विषय में सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर हम इस भौतिक लाइफ में भी देखें तो यदि किसी को प्रेम हो जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है अपने प्रेमी के विषय में सुनना, या प्रेमी के विषय में अगर बात हो रही है प्रीतम के विषय में तो कितना अच्छा लगता है। बस हर वक्त यही मन में होता है कि कहीं से उसकी कोई खबर मिल जाए, कहीं से पता चले कि वो क्या कर रहा है। हर वक्त माइंड में होता है कोई मैसेज आ जाए, कोई फोन आ जाए, किसी तरह से मुझे खबर पड़े कि वो अभी क्या कर रहा है, क्या मतलब। और यदि उसके ना फैमिली का कोई या उसके जानने वाला कोई हमें मिलता है तो फौरन कान है ना खड़े हो जाते हैं कि अभी मुझे उसके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, अभी मैं मुझे जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। और वो जो सामने बैठा होगा ना वो आपके हृदय की बात जानकर फौरन उसी के बारे में बताएगा, आज वो यहाँ आया था। तो इतना सुनने के लिए व्याकुल होते हैं। तो प्रेम का मतलब ही यही है कि आपके हृदय में उसके विषय में सुनने की इच्छा प्रकट हो जाए, और इच्छा से क्या होगा वो हृदय में सद्यो हृदय वरुद्यते हृदय में आ जाएंगे। अब इच्छा से यदि वो तत्क्षणात उसी टाइम पर हृदय में आ जाएंगे तो फिर उसको सुनने के बाद क्या होगा, सुनने के बाद जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते, खाली श्रवण करने की इच्छा ही काफी है क्योंकि हृदय में तो वो अवरुद्ध हो ही जाएंगे, लेकिन श्रवण करने से क्या होगा वो कभी जा ही नहीं पाएंगे, वो अपना निवास स्थान उस भक्त के हृदय को बना देंगे। और इसको कहते हैं ईश्वर का बंदी हो जाना हृदय में, कैद हो जाते हैं, भगवान जा ही नहीं सकते वहां से जहाँ जिसके हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने की केवल इच्छा मात्र प्रकट होती है और वो सुनने के लिए इतना उत्सुक होता है कि कैसे मुझे उसके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त हो। इच्छा होना वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। और ये कैसे होगी, जैसे कृति भी जब बहुत व्यक्ति बहुत बहुत भजन करेगा कथा करेगा तभी उसके हृदय में सुनने की इच्छा प्राप्त होगी। वास्तव में भक्तों यह श्रीमद् भागवतम केवल श्रवण करने के लिए बना है। दूसरे दूसरे शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के बाद हमें कुछ करना होता है कि भाई अब इस शास्त्र में ये आदेश दिया गया है तो मुझे ये करना है ये करना है। इवन जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत सारे आदेशों का पालन करना पड़ता है हमें, लेकिन यह श्रीमद् भागवतम केवल रस है। रस में क्या होता है, जैसे उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। जैसे अगर आप कोई फ्रेश जूस पी रहे हो उसके अंदर आपको ना चबाने की मेहनत करनी पड़ती है ना डाइजेस्ट करने की, ऐसे बस आपने पी लिया और बस मजा करो एंजॉय करो। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम रसमालयम है, हम लोग जब थर्ड श्लोक पढ़ेंगे ना तो रस का समुद्र है, बस उसके अंदर हमें इंजॉय करना है, पीना है, सुखी होना है और बहुत बहुत आनंदित होना है, क्योंकि आनंद का प्रगाढ़ सागर है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम को केवल श्रवण करना है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ और आनंदित हो जाओ, और उसको कुछ और इसके अतिरिक्त, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया भागवत श्रवणम। बहुत सारे जितने भी दूसरे का पांच चीजें बताई, जितने भी हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पहले साधु संग करना, दूसरे नंबर पर आशा विग्रह की सेवा करना, भगवान के नाम का पवित्र कीर्तन करना और धाम में वास करना और श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, इसमें सबसे आसान काम अगर हम देखें, सबसे सरल काम है कि श्रवण करना। और प्रथम भक्ति ही श्रवण करना होती है, उसमें आपको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाओ, वो वक्ता जो है वो बोलता जाए और आपके कान के जो है ना माध्यम से, कान के माध्यम से वो रसमय कथा जब आपके हृदय में जाती है तो वहां पर भगवान बंदी हो जाते हैं। एक बार फिर श्लोक को देखेंगे, धर्म ब्रोजित कर्तव्योत्र परमो निर्मत्सरा राम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वापरैरीश्वरः सद्यो ऋद्ध्य वरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अनुवाद देखिए, यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। यानी कि जो भौतिक दृष्टि से उत्पन्न होने वाले जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, उन सबको पूरी तरह से बहिष्कृत करता है, मतलब उनको सबको अस्वीकार करता है। और सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, मतलब जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च सत्य है उसको ही हमें बता रहा है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। और ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से सद्य, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, वही केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के रस का आस्वादन कर सकते हैं। और आगे, यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के लिए कल्याण के लिए मोह से विभेदित है, ऐसा सत्य तापत्रय को मूल नष्ट करने वाला, यानी कि ये जो तापत्रयोन्मूल वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूल, यानी कि ये जो सर्वोच्च सत्य जब हम सुनते हैं वही वास्तविकता है। सच्चाई केवल यही है कि कृष्ण के विषय में और इस संसार में जो कुछ भी है वो सब झूठ है, सब मिथ्या, सब कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, कुछ भी प्रेम करने योग्य नहीं है, केवल कृष्ण ही पूर्ण है और पूर्ण सत्य है। तो सत्य की वास्तविकता है जो सबों के लिए कल्याण करे, क्योंकि सत्य क्या है, जो आपका कल्याण करे और कल्याण के लिए मोह से विभेदित, जिसके अंदर कोई मोह नहीं हो, जिसके अंदर कोई कपट नहीं हो। और वो उस सत्य को जानने के बाद वेद्यम, यानी जानने के बाद क्या होगा, ऐसा सत्य तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों को मूल से नष्ट कर देगा। महामुनि वेद व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। यानी कि यह श्रीमद् भागवतम, क्योंकि महामुनि वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा, तो भगवान का साक्षात करने के लिए यही काफी है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र को पढ़ने की कैसी आवश्यकता, किम वा परैरीश्वरे, अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, कि आपके हृदय के अंदर भगवान आके बैठ जाए। और आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएं, तीन तीन प्रकार के जो कष्ट हैं वो आपसे आप उनका नाश हो जाए और आपका कल्याण हो, शिवदम। तो ये सब जब इसी शास्त्र से हो जाता है तो क्यों आप अरेरीश्वर है, दूसरे शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है तो ज्ञान के इस संस्कार यानी अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तद्योरिद्यवरुद्यते तकृति भी शुश्रूषुविस्तत्क्षण, उसी समय भगवान आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने द्वितीय श्लोक को समझने का प्रयास किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, अब तो हम लोग सिर्फ श्लोक को समझे हैं कि इसके अंदर क्या, और श्रील प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।